سامعین حضرات، آپ حضرات کو اس واقعہ سننے کے لیے کافی انتظار کرنا پڑا ہے، لیکن آئیے اب آپ کو ہم کافی انتظار کے بعد سنانے جا رہے ہیں تاریخ اسلام کی بہت بڑی جنگ جس کو غزوہ احد کہتے ہیں۔ یہ کلام ہندوستان کے عظیم شاعر شوق وزیر گنجوی کے قلم کا لکھا ہوا ہے، میوزک ارینجمنٹ آلون براؤن کا ہے، اور یہ پیشکش ہے سپر کیسٹ انڈسٹریز اور گلشن کمار کی، اور اس کیسٹ کو آپ حضرات تک پہنچا رہے ہیں تسلیم عارف اور ان کے ہم نوا۔ لیجیے سماعت کیجیے گا یہ ایک تاریخی جنگ جس کو جنگ احد کہتے ہیں۔ دو کیسٹ پر مشتمل یہ سیٹ ہم آپ حضرات کو سنائیں گے۔ لیجیے پہلے حصہ اول سماعت کیجیے گا۔
سناتا ہوں تمہیں جنگ احد کا واقعہ، سن لو۔
سناتا ہوں تمہیں جنگ احد کا واقعہ، سن لو۔
ہوا ہے کیسے باطل اور حق کا مار کا، سن لو۔ کیسے باطل اور حق کا مار کا، سن لو۔
پہلا بند، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جنگ بدر تھوڑے سے مسلمانوں نے کس طرح سے جیت لی تھی، اور اس جنگ میں ابو جہل بھی مارا گیا تھا اور کئی سردار مکے کے مارے گئے تھے۔ ایک شیر دل عورت جس کا نام ہندہ تھا، اس کا پدر اور پسر دونوں ہی اس جنگ میں مارے گئے تھے، لیکن اس نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں جب تک بدلہ نہیں لے لوں گی حضرت امیر حمزہ سے، جب تک نہ تو کوئی سنگار کروں گی اور جو ایش و عشرت کا سامان ہے کچھ بھی نہیں کروں گی۔ تو لیجئے سماعت کیجئے گا یہ پہلا بند اور غور فرمائیں۔
ہوئی جو جنگ پہلی بدر میں، کافر اسے ہارے، ابو جہل اور کئی سردار مکے کے گئے مارے۔ تھی ایک مکے میں عورت شیر دل اور کینہ پرور تھی، تھا اس کا نام ہندہ، نام بر اتبا کی دختر تھی، ابو سفیان کی بیوی تھی وہ چالاک عورت تھی، محمد اور خدا کے نام سے اس کو عداوت تھی۔ مسلمانوں سے پہلی جنگ کو ابو جہل پہنچا تھا، مقام بدر پہ جا کر نہتوں پہ کیا حملہ، گیا وہ خود بھی مارا اور بہت سردار کام آئے، نہ دولت کام آئی اور نہ کچھ ہتھیار کام آئے۔ وہ جنگ بدر تھوڑے سے مسلمانوں نے جیتی تھی، رسول پاک بھی تھے ساتھ میں، امداد غیبی تھی، پسر بھائی پدر ہندہ کے بھی تینوں گئے مارے۔ مسلمانوں کی نفرت کے بھرے تھے دل میں انگارے، برادر بدر میں اس کا علی حیدر نے مارا تھا، پسر اور باپ کا حمزہ نے دھڑ سے سر اتارا تھا، تمامی اہلِ مکہ سب مسلمانوں سے بدزن تھے، خصوصاً کملی والے مصطفیٰ کے سخت دشمن تھے۔ بدی تھی ان کی نیت میں وہ گویا ناگ کالے تھے، اصول انسانیت کے سب انہوں نے توڑ ڈالے تھے۔ قسم کھائی تھی ہندا نے کہ اب بدلا چکاؤں گی، کلیجا اور جگر حمزہ کا دانتوں سے چباؤں گی،
نہ لوں گی بدلا جب تک عیش کے سب کار چھوڑوں گی، نہ لوں گی بدلا جب تک عیش کے سب کار چھوڑوں گی،
اتاروں گی نہ غسل اپنا سبھی سنگار چھوڑوں گی، کہا اب بدر کا بدلہ لیا جائے، مسلمانوں کا دنیا سے صفایا کر دیا جائے، کیا ہندا نے گھر گھر جا کے چندہ ہر قبیلے سے، ہوئی دولت اکٹھی جنگ مغلوبہ کے ہیلے سے، بنے ہتھیار آلہ اور خریدے اونٹ گھوڑے بھی، سرا اور خود بکتر گرز دستانوں کے جوڑے بھی، خریدے چار آئینے کمندے اور زنجیریں، کمانے تیر نیزے سیف ڈھالے اور شمشیریں، سبھی کے دل میں جوش جنگ تھا لڑنے کا ارماں تھا، ابو سفیان ساری قوم میں سب سے نمایاں تھا، وہی تھا ظلم کا بانی وہی سردار تھا سب کا، وہی زردار تھا سب میں وہی سالار تھا سب کا، کیا یہ اس نے وعدہ جنگ میں جو مارا جائے گا تو اس کے بال بچوں کو ابو سفیاں کھلائے گا، جو تھے نادار ان کے گھر دیا کھانے پکانے کو، کہا تیار ہو اب دین احمد کے مٹانے کو، جو مارے گا محمد کو علی کو اور حمزہ کو، تو میں سردار کر دوں گا اسے اس کے قبیلے کو۔
ابو سفیاں ادھر تیار کرتا تھا رسالوں کو، ابو سفیاں ادھر تیار کرتا تھا رسالوں کو،
بھروسہ تھا ادھر اللہ پر اللہ والوں کو،
जब हिंदा ने ये ऐलान किया तो अबू सुफियान सबसे कहता है कि जो भी मोहम्मद अली और हमजा को मारेगा इस जंग में तो मैं उसको जरदार कर दूंगा। लेकिन अबू सुफियान उधर तैयार करता था रिसालों को, भरोसा था इधर अल्लाह पर अल्लाह वालों को। आगे क्या होता है सुने।
रसूल पाक ने जब मक्के वालों की खबर पाई, जमात आपने सब मस्जिद नबवी में बुलवाई। कहा लोगो अबू सुफियान ने फितने उठाता है, मुसलमानों से करने जंग लश्कर लेके आता है। वो जालिम फौज लेकर फिर दोबारा जंग करने को, मदीने की तरफ आता है तुमको तंग करने को। बहुत भारी है लश्कर फौज के कट्टर रिसाले हैं, करो तैयारियां तुम भी के वो जल्द आने वाले हैं। मदीने ही में रहकर रोकना है दाखला उनका, के मजबूरी जो देखे लौट जाए काफला उनका। सरों पे उनके जिस दम गाजियों के तीर बरसेंगे, तो फिर कैसे लड़ेंगे शहर में घुसने को तरसेंगे। जवानों ने कहा हम लड़ने मरने से नहीं डरते, रहे क्यों शहर में जब जंग करने से नहीं डरते। कोई बोला नहीं है जंग करने का हुनर तुम पर, तो बोले नौजवान पाई पता फिर बद्र में क्यों कर। बहुत थोड़े थे पहले अब मुसलमान कुछ ज्यादा हैं, रहे वो शहर के अंदर के जिनके काम इरादा हैं। गरज दो राय देखी तो कहा सरकार आली ने, तुम्हें चक्कर में डाला है तुम्हारी खाम ख्याली ने।
सुनो सब लोग सोचो खूब अपना मशवरा कर लो, सुनो सब लोग सोचो खूब अपना मशवरा कर लो।
जो अक्सरियत का मंशा हो उसी पर फैसला कर लो,
से कहते हैं कि सब लोग मस्जिद नबवी में आ जाएं और मशवरा कर लें कि अब क्या किया जाए। तो कुछ लोग बोले कि जब हम जंग बदर जीत चुके हैं तो फिर इस जंग के लिए हम शहर में रहकर नहीं बल्कि शहर से बाहर जाकर उन लोगों का मुकाबला करेंगे। जब रसूल पाक ने दो राय देखी तो कहा कि आप लोग पहले फैसला कर लें, जो अक्सरियत का यानी जो ज्यादा लोगों का फैसला होगा वही तस्लीम किया जाएगा। तो सुने क्या होता है।
रसूल अल्लाह ये कहकर ले गए तशरीफ हुजरे में, के ता सब लोग आजादी से अपना मशवरा कर लें, के उनमें कुछ मुनाफिक कुछ अभी ईमान लाए थे, अभी रन भी न देखा था न तन पर जख्म खाए थे। इसी बाइस तजर्बा कारों की हर बात रद्द कर दी, कहा बाहर लड़ेंगे हम दिखाएंगे जवां मर्दी। हुआ ये फैसला कसरत का निकले शहर से बाहर, नहीं कमजोर तो फिर क्यों रहे हम शहर के अंदर। मुदब्बिर लोग थे कमराए अक्सरियत ने जब टाली, तो फिर आका ने भी मंजूर सबकी राय फरमा ली, जो पहने जंग के मलबूस और हथियार आका ने, तो रोकर बादब ये अर्ज की उस दम साहबा ने, कि ये सरकार क्यों ये जेब तन हथियार और कपड़े अभी मौजूद है हर जंग को कादिम ये आका के, कहा सरकार ने मंजूर है कसरत की अब अर्जी, चले अब शहर से बाहर यही है सबकी जब मर्जी, जरूरत आएगी मुझको भी लड़ने की ये लगता है, जो होना है वो होगा इसमें रोने का सबब क्या है, नबी ये पाक जाबाजों को लेकर शहर से निकले, ओहद की एक पहाड़ी के करी पहुंचे वहीं ठहरे,
लगाए अपने खेमे रात आई सोए राहत में,
लगाए अपने खेमे रात आई सोए राहत में,
लगाए अपने खेमे रात आई सोए राहत में,
रहे सरकार लेकिन रात भर रब की इबादत में, सब खेमे किए खेमों में उम्दा फर्श बिछवाए, बहुत सामान था उन पर अजीम शान लश्कर था, शराबे पी रहे थे और हुबल का नाम लब पर था, बहुत सी औरतें जज्बात भड़का नेको आई थी, मुसलमानों का कत्ले आम करवा नेको आई थी, अबू आमिर ने रातों रात कुछ खंदक भी खुदवाए, कि ये खशपोश खंदक ताके जो आए वो गिर जाए, हुई जिस दम सहर तो दी अजा अल्लाह वालों ने, नमाज़े बाजमात की अदा रोशन ख्यालों ने, इमामत की रसूले पाक ने तात गुजारों की, बलाएं रहमतों ने ली नबी के जानिसारों की, किया सबको मुखातिब हादिये आलम ने फरमाया, सुनो अब गौर से अब मारने मरने का वक्त आया, जिहादे फी सबीलिल्लाह से शाने मुसलमान है, जिहादे फी सबीलिल्लाह जाने दीन ईमान है, खिलाफे कायदा कोई अमल मत जंग में करना, किसी लालच में आकर फर्ज की राहों से मत हटना, पड़े कैसी ही मुश्किल जंग में लेकिन न घबराना, खुदा की राह में लड़ते हुए कुर्बान हो जाना,
शहादत मिलती है बेशक बड़ी तकदीर वालों को,
शहादत
मिलती है बेशक बड़ी तकदीर वालों को,
शहादत एक नेमत खास है रोशन ख्यालों को,
शहादत एक नेमत खास है रोशन ख्यालों को, शहादत
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहते हैं कि 50 इंसान जो सामने टीला दिख रहा है उस पर चढ़ जाएं, चारों तरफ को अपनी नज़र रखें और जब तक मैं ना कहूं कोई भी उस पहाड़ी से नीचे नहीं आएगा। लेकिन क्या होता है आगे सुने,
50 इंसान जाएं सामने टीले पे चढ़ जाएं, पहाड़ी पर रहें हर सू निगाहें अपनी दौड़ाएं, कोई ऊपर चढ़े दुश्मन तो उस पर तीर बरसाना, न जब तक हम कहें नीचे पहाड़ी से नहीं आना। अबू सुफियान जब मैदान में लश्कर को ले आया, सफ़ें तैयार की और अफसरों को खूब समझाया, इधर सरकार ने सफबंदी का जब हुक्म फरमाया, तो अब्दुल्लाह इब्ने उब्बी लश्कर से निकल आया, निकाले 300 अपने जवाब बोला पैगंबर से, बड़ी नादानी है लड़ना अजीम शान लश्कर से, है दुश्मन 10 गुना ज्यादा हमें जिंदा न छोड़ेगा, कोई क्यों जान कर पत्थर से अपने सर को फोड़ेगा, लगा कहने मुसलमानों से समझो मेरे मकसद को, मेरे हमराह आओ जंग करने दो मोहम्मद को, ये फरमाया उमर ने जुर्म तेरा ला तलाफी है, तुझे जाना है जा हमको नबी का साथ काफी है, तेरे बहकाए में मर्दूद हम हरगिज न आएंगे, नबी के हुक्म पर जी जान से कुर्बान जाएंगे।
नबी बोले मुनाफिक की यही पहचान होती है,
नबी बोले मुनाफिक की यही पहचान होती है,
नबी बोले मुनाफिक की यही पहचान होती है,
गरज होती नहीं ईमान से प्यारी जान होती है,
आदमी ऊपर चढ़ जाएं और जब तक हम ना कहें नीचे ना आए, तो अब्दुल्लाह इब्ने उब्बी ये कहकर कहता है कि इतने बड़े लश्कर से लड़ना हमारी हिमाकत है, हम तो लड़ नहीं सकते, जिसको मरना है वो यहाँ रुके, मैं तो जाता हूँ। हुजूर सरवरे कायनात के गाजी हजरत उमर ने कहा कि या मर्दूद तुझको जाना है तू चला जा, लेकिन हमें तो नबी का साथ ही काफ़ी है। हुजूर फरमाते हैं कि देखो मुनाफिक की यही पहचान होती है, ईमान से मतलब नहीं बल्कि उसको अपनी जान प्यारी होती है। उसके बाद वो मर्दूद मुनाफिक अपना शाना हिलाता हुआ चल देता है और आगे क्या होता है सुने,
मुनाफिक चल दिया सुनकर हिलाता अपने शानों को, गया हमराह लेकर 300 अपने जवानों को, इधर अब 700 गाजी रहे मैदान में आका के, उधर थे 10,000 अफराद नामी फौज आदा के, सभी को नाज था मगरूर थे वो अपनी ताकत पर, नहीं फूले समाते थे पहलवानों की कसरत पर, इधर इस्लाम का लश्कर भी कायम था करीने से, ये लश्कर क्या नमाजी आ गए थे बस मदीने से, बहुत से नौजवान और ना तजर्बा कार थे उम्र भी कुछ आशिके सरकार थे उनमें नबी के हुक्म की तामील करना उनका मकसद था डटे रहना खुदा की राह में हुक्मे मोहम्मद था ये फरमाया नबी ने मौत से हरगिज न तुम डरना जवां मर्दी से लड़ना पेशो कम की फिक्र मत करना अमा मांगे जो तुमसे उसको तुम बिलनारू मत करना ज़ईफों औरतों पे बेकसों पे बारू मत करना नबी समझा रहे थे तो वो मुशरिक और बढ़ आए अबू आमिर ने सबके साथ पत्थर खूब बरसाए सफों में आके जब गिरने लगे फेंके हुए पत्थर तो देखा गाजियों ने भी बस हुए शाहे पैगंबर
नबी ने भी इजाजत अपने परवानों को जारी की
जवाबन अहले ईमान ने भी उन पर संग बारी की पत्थर नाक पर वो गिर पड़ा नीचे निदामत भी हुई और तैश भी आया हजीमत से अलंबरदार तलहा चीखता निकला जमात से कहा कोई बहादुर हो तो मेरे सामने आए जो मरना चाहता हो वो मकाबिल मेरे आ जाए मैं दीन इस्लाम को अब फूलने फलने नहीं दूंगा के अनदेखे खुदा की राह पर चलने नहीं दूंगा ये सुनकर हो गए बेचैन हैदर जोश में आए रसूल अल्लाह से बोले अब इजाजत मुझको दी जाए जवाब उनको मिला जाओ अली तुमको इजाजत है खुदा पर आसरा रखो उसी के हाथ नुसरत है करीबे तलहा जब पहुंचे अली से बोला नरमी से बिरादर तुम नहीं वाकिफ मेरी ताकत की गर्मी से अभी क्यों आ गए आलम है तुम पर नौजवानी का अली बोले नहीं ये वक्त बेजा लंतरानी का तेरी ताकत की गर्मी को अभी हम देख लेते हैं मगर हम इससे पहले मशवरा एक तुझको देते हैं
कि तू ईमान ले आ मुस्तफा पर छोड़ देंगे हम
तू ईमान ले आ मुस्तफा पर छोड़ देंगे हम
कि तू ईमान ले आ मुस्तफा पर छोड़ देंगे हम
नहीं तो वार कर तेरा तकब्बुर तोड़ देंगे हम तेरा तकब्बुर तोड़ देंगे हम
तेरा तकब्बुर तोड़ देंगे हम
ओहद में बहुत ही शानदार तरीके से शौक साहब ने अल्फाजों को पिरोया है। जब तलहा ये कहता है कि कोई है तो मेरे मुकाबिल आए, ये सुनकर हजरत अली बेचैन हो जाते हैं और कहते हैं कि या रसूलल्लाह इजाज़त दीजिए। लेकिन तलहा कहते हैं कि अभी क्यों आ गए, आलम है तुम पर नौजवानी का। अली बोले नहीं, ये वक्त बेजा लंतरानी का, तेरी ताकत की गर्मी को अभी हम देख लेते हैं, मगर हम इससे पहले मशवरा एक तुझको देते हैं कि तू ईमान ले आ मुस्तफ़ा पर, छोड़ देंगे हम, नहीं तू वार कर तेरा तकब्बुर तोड़ देंगे हम। लेकिन अली की ये बात सुनकर क्या होता है, समाप्त कीजिएगा।
अली की बात सुनकर खींच ली तलवार तलहा ने, अली पर कर दिया एक बार ना हंजार तलहा ने। अली शमशीर जन थे, खा नहीं सकते थे वो धोखा, जवा मर्दी से उस तलवार को तलवार पर रोका। खिलाड़ी था बड़ा तलहा बराबर वार करता था, खुदा का शेर भी हर वार को बेकार करता था। कज़ा में साज सा बजने लगा था झंझनाहट से, हुआ दीवाना तलहा तैश खाकर बौखलाहट से। उधर दोनों तरफ के लश्करी नजारा करते थे, इधर मैदान में दोनों बड़ी जुरत से लड़ते थे। लड़ाई में बड़ी फुर्ती से तलहा काम लेता था, संभलने का अली को वो जरा मौका न देता था। मगर एक बार उसका वार खाली दे दिया हटकर, बड़ी फुर्ती से मारी तेग अपनी तलहा के सर पर। अली की जुल्फिकार उठी तो आंखें हो गई खीरा, किए मगफर के टुकड़े सर से लेकर ताहलक चीरा। सदा एकदम से गूंजी उस घड़ी अल्लाह अकबर से, सुना पुरजोर नारा गाजिया ने दी के लश्कर से। पयंबर की जुबा पर कलमाए शुक्रे खुदा आया, उधर दुश्मन का लश्कर देख कर ये हाल घबराया।
हुए थे चेहरे फक मक्के के सब फौजी रिसालों के, हुए थे चेहरे फक मक्के के सब फौजी रिसालों के।
खुशी से खिल उठे चेहरे सभी अल्लाह वालों के,
तोड़ देती है। ये देखकर मुखालिफ फौज में एकदम घबराहट पैदा हो जाती है, सभी के चेहरे फक हो जाते हैं। लेकिन इधर सभी अल्लाह वालों के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। उसके बाद क्या होता है जरा सुनिएगा।
गिरा तलहा पर है ना हो के तड़पा हो गया ठंडा, अली ने तंधका उसका उसी का डाल कर झंडा। पता पाकर अली आए तो आका को सलामी दी, नबी ने उनको सीने से लगाया शाद कामी दी। फिर उसके बाद मैदान में अबू शैबा निकल आया, बिरादर था वो तलहा का बड़े गुस्से में बल खाया। पुकारा मैं अलम बरदार हूँ कोई मकाबिल हो,
شہادت مجھ سے پائے اور وہ جنت میں داخل ہو. اجازت حمزہ نے چاہی شہنشاہ دو عالم سے, کہا للکار دشمن کی صحیح جاتی نہیں ہم سے. اجازت مل گئی حمزہ کو تو میں دان میں پہنچے, ابو شیبہ جہاں تھا اس جگہ ایک آن میں پہنچے. ابو شیبہ نے حمزہ سے کہا تو آ گیا رن میں, خوشی ہوگی مجھے پہنچاؤں گا میں تجھ کو مدفن میں. ہمارے نام بر سردار مارے بدر میں تو نے, بہائے ہیں لہو کے خوب دھارے بدر میں تو نے. کیا برباد گھر ہندا کا اب تو بچ نہ پائے گا, تو بوڑھا ہے جواں ہوں میں مزہ کیا خاک آئے گا. یہ کہتے ہی اچانک اس نے نیزہ تان کر مارا, انہوں نے جنگ حمزہ سے نہیں واقف تھا بیچارہ.
چچا تھے حمزہ پیارے مصطفیٰ کے مرد غازی تھے, چچا تھے حمزہ پیارے مصطفیٰ کے مرد غازی تھے.
برائے دین ان کے کارنامے امتیازی تھے, کہتا ہے تو پھر حضرت امیر حمزہ ہمارے آقا سے اجازت چاہتے ہیں. کہتے ہیں کہ دشمن کی للکار یا رسول اللہ ہم سے نہیں سنی جاتی, آپ اجازت دے دیجئے. تو ابو شیبہ نے حمزہ سے کہا تو آ گیا رن, تو نے ہمارے نامور سردار بدر میں تم آ رہی ہے, ہندا کا گھر برباد کر دیا ہے اور تو پھر لڑنے آ گیا, آج تو ہمارے ہاتھ سے بچ نہیں سکتا. تو بوڑھا ہے میں جوان, کیا مزہ آئے گا لڑائی کا. یہ کہتے ہی اس نے اچانک ایک نیزہ جو تان کر مارا, لیکن حضرت امیر حمزہ نے اپنا فنون جنگ دکھایا. یہ کون تھے؟ چچا تھے حمزہ پیارے مصطفیٰ کے مرد غازی تھے, برائے دین ان کے کارنامے امتیازی تھے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا سنے گا.
جناب حمزہ نے نیزہ پکڑ کر ایک دیا جھٹکا, گرا ہاتھوں سے نیزہ تو اسے ایک دم ہوا کھٹکا. کہا حمزہ نے مت گھبرائیے تلوار لے لیجئے, بڑھاپے پر ہمارے رحم ذرا بھر نہیں کیجئے. یہ سن کر اور غصے میں بھرا ظالم ابو شیبہ, نکالی میان سے تلوار تن کر سامنے آیا. ادھر حمزہ نے بھی شمشیر اپنی ہاتھ میں تولی, ابو شیبہ نے بدلا پیترا فن کی گرہ کھولی. اچانک کر دیا حمزہ پہ پھر تلوار سے حملہ, کیا حمزہ نے اس کا رد نئے اتوار سے حملہ. لیا تلوار پہ تلوار کو تلوار پھر ماری, رہا دستے مخالف میں فقط دستہ تھی بیزاری. ابو شیبہ کے منہ پر ایک دم سے چھا گئی زردی, لگا کہنے تعجب ہے کہ بوڑھے میں جوان مردی. بچا کر جاں ابو شیبہ نے ایک دم بھاگنا چاہا, جو دستہ ہاتھ میں تھا وہ رکھے
हमजा पे दे मारा, बचाया उसको भी हमजा ने मारी, तेग शैबा के तो सर के और धड़ के दो बराबर हो गए टुकड़े। ये हालत देख कर फौरन अबू सुफियान ने रुख बदला, कहा एकदम मुसलमानों पे सब मिलकर करो हमला।
मोहम्मद की सिपा से यूं तो जीता जा नहीं सकता, मोहम्मद की सिपा से यूं तो जीता जा नहीं सकता।
अकेले पर अकेले कोई फतह पा नहीं सकता,
का खात्मा तमाम कर देते हैं। तो फिर ये देखकर अबू सुफियान कहता है कि ऐसे अकेले पे अकेले कोई भी मोहम्मद की फौज पर कब्जा नहीं पा सकता, जीत नहीं सकता, बस एक ही तरकीब है कि हम सब मिलकर इन पर हमला करें। तो ये सुनकर उसकी फौज बड़ी जोश और मसर्रत से आगे बढ़ती है, लेकिन ये मुसलमानों की फौज जो थी इधर, ये किस तरह से लड़ते हैं समाप्त कीजिएगा।
ये सुनकर फौज मक्के की बढ़ी जोशे मसरत से, के सीने में भारी थी आग इस्लामी अदावत से। मुसलमानों ने चाहा इज्म बढ़कर हमला करने का, मगर सरकार ने रोका उन्हें करने दो तुम हमला। मगर जब 10,000 आए पहलवान तीर बरसाते, मुसलमान फिर कहां तक और आखिर सब्र फरमाते। कहा सरकार दुश्मन सर पे आए क्या किया जाए, तो फरमाया रसूले पाक ने बदला लिया जाए। तो फिर अल्लाह वालों ने भी हमला कर दिया उन पर, हुई तीर अफगानी बरसात सी होने लगी सरसर। कहा सरकार ने ये फिर दोबारा टीले वालों से कि तुम होशियार रहना, दुश्मना ने दी की चालों से, किसी हालत में भी नीचे पहाड़ी से नहीं आना। पहाड़ी पर चढ़े दुश्मन तो उन पर तीर बरसाना, न तुम लालच में आना भूल कर माले गनीमत के, न तुम चक्कर में पड़ जाना फतह के और हजीमत के। अबू शैबा को जिस दम मार कर वापस फिरे हमजा, तो दुश्मन दौड़ कर आगे बढ़े उनमें घिरे हमजा। मगर जो सामने आया उसे हमजा ने ललकारा, नहीं माना तो फिर पढ़कर दिलेरी से उसे मारा।
रसूल पाक ने ये देख कर ऐलान फरमाया, रसूल पाक ने ये देख कर ऐलान फरमाया,
बोले शमशीर मेरी ये अदा कर दे जो हक इसका,
¡Gracias!
पाक ये देखकर ऐलान करते हैं कि वो मेरी तलवार ले ले जो इसके हक को अदा कर दे। ये सुनकर कौन आता है रसूल पाक के सामने? हजरत दूध जाना आते हैं और कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, ये तलवार मुझको इनायत हो जाए, मैं इसका हक अदा कर दूंगा। तो आगे क्या होता है सुनिएगा, हजरत बूद जाना उस तलवार का हक किस तरह अदा करते हैं।
जनाबे बूद जाना ने अदब से अर्ज की, आका इनायत सैफ हो मुझको अदा हक इसका कर दूंगा। रसूले पाक ने शमशीर दे दी बूद जाना को, कहा लो सैफ मेरी और तुम रन को रवाना हो। खुशी से बूद जाना ने नबी की तेब को चूमा, किया इकदाम उस जानिब घिरे थे जिस जगह हमजा, वहीं तक लड़ते लड़ते जा रहे थे बूद जाना भी। मुखालिफ को हटाना मारना खुद को बचाना भी, करीबे हमजा पहुंचे बूद जाना तो नजर आया के मक्तूलों की लाशों का वहां एक ढेर सा पाया। कुरैशी फौज सारी आ गई इन दोनों के ऊपर, तो जब तक गाजियाने दीन का भी आ गया लश्कर। बड़ा घमसान कारण हर तरफ तलवार चलती थी, झनाझन होती थी और बर्क सीरन में चमकती थी। कि दस्ते बूद जाना में नबी की तेग लासानी, लगाए ढेर लाशों के थी उसकी काट तूफानी। रसूल अल्लाह की शमशीर ने मैदान कर डाला, चली जिस सिमत भी उसने बहाया उनका नाला। उमर अबू बकर और उस्मा अली हमजा सभी बढ़कर, बड़ी जीदारी से लड़ते थे सब मैदान के अंदर।
लगाते थे वो गाजी नारा जब अल्लाह अकबर का, लगाते थे वो गाजी नारा जब अल्लाह अकबर का।
दहल जाता था दिल हैबत से उस मगरूर लश्कर का,
जब अल्लाह वाले नारे तकबीर की सदा बुलंद करते थे तो उस वक्त हैबत से उस मगरूर लश्कर का दिल दहल जाता था। हजरत उमर, अबू बकर, हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत हमजा सभी बड़ी दिलेरी के साथ, जीदारी के साथ लड़ रहे थे, लेकिन अबू सुफियान की बीवी हिंदा सारी औरतों को इकट्ठा करके ले आई और अपने लश्कर को जोश दिलाती थी। पीछे पीछे ये औरतें हैं, आगे मर्द हैं। तो इसके बाद जब गाजियों को ये देखते थे मुखालिफ फौज वाले तो इनका जिगर पानी पानी हो जाता था। क्यों? इसलिए कि हम 10,000 हैं और ये सिर्फ 700, फिर भी हमारे मद्दे मुकाबिल हैं। लेकिन ये कौन थे? ये गुलामाने मोहम्मद थे। सुनिएगा सामीन ये बंद।
अबू सुफियां की बीवी हिंदा सारी औरतें मिलकर, दिलाकर जोश मर्दों को बढ़ाती लड़ने मरने पर। बड़े ही जोश
होश में पढ़ते थे वो सब जुल्म के बानी, मगर जब काजियों को देखते होता जिगर पानी। मुजाहिद 700 से कम थे उस मैदान के अंदर, मुखालिफ दीन के थे 10,000 अच्छे जवां अफसर। गुलामाने मोहम्मद मुत्तहिद होकर बढ़े आगे, पटा मैदान लाशों से तो दुश्मन दीन के भागे। लगे घोड़े बिदकने दुश्मनों पर कहर टूटा था, गए मारे अलम्बरदार सब गर्दिश ने लूटा था। अबू बकर उमर मैदान में जिस्म तो बढ़ जाते, उधर सर कट के गिरते पांव दुश्मन के उखड़ जाते। चली उस्मान की तलवार तो घबरा गए दुश्मन, अली के सामने आए वो दो दख पा गए दुश्मन। जनाबे हमजा की तलवार वो जौहर दिखाती थी, बिछा देती थी लाशें वो जिधर भी घूम जाती थी। मुजाहिद था हसी एक हंजला जब वार करता था, तो बढ़ते दुश्मनों के होश वो बेकार करता था। दिखाई गाजियाने दीन ने ऐसी जवां मर्दी कि सारी दुश्मनों की फौज दम में मुंतशर कर दी।
जो देखा जंग में ये हौसला अल्लाह वालों का,
जिगर थर्रा गया मैदान में फौजी रिसालों का,
जिगर थर्रा गया मैदान में फौजी रिसालों का, जिगर थर्रा गया मैदान में फौजी रिसालों का।
लीजिए हजरात, जंगे उहद वॉल्यूम 1 का ये आखिरी बंद आपकी नजर है। इसके बाद का वाकया आप दूसरी कैसेट में सुनेंगे। ये 2 कैसेट का सेट जंगे उहद के वाकये का है, और इससे पहले आप जंगे खैबर जंगे बदर सुन ही चुके हैं, लिहाजा ये जंगे उहद भी अब आपकी नजर हमने कर दी है। इंशाल्लाह हमारी अगली कोशिश होगी कि आपको जंगे खंदक और फतह मक्का सुनाएं। इंतज़ार कीजिए जंगे खंदक और फतह मक्का इस कैसेट का, और जंगे उहद वॉल्यूम 1 का ये आखिरी बंद समाप्त फरमाइएगा। कैसे
अबू बकर उमर मैदान में जिस सिमत बढ़ जाते, उधर सर कट के गिरते पांव दुश्मन के उखड़ जाते। चली उस्मान की तलवार तो घबरा गए दुश्मन, अली के सामने आए वो दोजख पा गए दुश्मन। जनाबे हमजा की तलवार वो जौहर दिखाती थी, बिछा देती थी लाशें वो जिधर भी घूम जाती थी। मुजाहिद था हसी एक हंजला जब वार करता था, तो बढ़ते दुश्मनों के होश वो बेकार करता था। दिखाई गाजियाने दीन ने ऐसी जवां मर्दी के सारी दुश्मनों की फौज दम में मुंतशर कर दी। जो देखा जंग में ये हौसला अल्लाह वालों का, जिगर थर्रा गया मैदान में फौजी रिसालों का। न
نہ ٹھہرا جا سکا تو مکے والے ایک دم بھاگے, مجاہد پیچھے پیچھے اور وہ مشرک سبھی آگے. جو آ جاتا تھا صدمے قتل ہو کے نیچے گرتا تھا فرشتہ موت کا ان مشرکوں کے پیچھے پھرتا تھا. نہ ان کا کوئی حامی تھا نہ ان کا کوئی یاور تھا, فقط جھوٹے خداؤں کا خیالی سایہ سر پر تھا. اگر کرتے وہ ہمت تو ابھی تعداد کافی تھی, مگر لا تو ہو بلکہ یاد ان کے کام کیا آتی. بچا کر جان بھاگے اور بڑی مشکل سے بچ پائے, ہوئی یہ خیر کے غازی سبھی واپس چلے آئے.
مدینے کے نمازی بن گئے میدان میں غازی, میدان میں غازی.
لگایا نعرہ توحید جیتی جنگ کی بازی,
لگایا نعرہ توحید جیتی جنگ کی بازی, لگایا نعرہ توحید جیتی جنگ کی بازی.
مدینے کے نمازی بن گئے میدان میں غازی,
لگایا نعرہ